वर्षों से सिर्फ तपस्या के वाइब्रेशन से भरपूर हो रही भूमि है और यहाँ बत्ती का चांस मिलना यही हमारे लिए बड़े भाग्य की बात है। हम कल से इस बात को सुन रहे हैं, इसीलिए मेरा आप सबसे विशेष अनुरोध है, बत्ती का एक दिन तो आज हमने पूरा किया है, हमारे पास अभी भी बत्ती के दो दिन हैं, फुल टू डेज। हर एक लक्ष्य बनावे, आज का जो पास्ट हो गया सो पास्ट, लेकिन कल और परसों दो दिन, एटलीस्ट परसों शाम तक 7:30 बजे के बाद भले मौन छोड़ देना, लेकिन कल और परसों दो दिन फुल मौन में रहना है। आज कहां कहां से आवाज आई है कि कमरों में भी बहुत आवाज होता है। हम एक बात करेंगे, दूसरे 2-3-4 में जो मौन में होगा उसकी भी साधना डिस्टर्ब होगी, आसपास जहां आवाज जाएगा उनको भी संकल्प चलेगा। इसीलिए हर एक कोशिश करे कि कल पूरा दिन और परसों शाम को 7:30 बजे तक फुल मौन में रहना है। हो सकता है तो हाथ उठाओ। थैंक यू। जो समझते हैं कि संभव नहीं है, हाँ वो पहले ही छुट्टी ले लो, उनको छुट्टी दे देंगे, हाथ उठा लो। थैंक यू। ठीक है, तो कल फुल, कल कहीं से आवाज नहीं आए, हाँ डाइनिंग हॉल में भी हम बातें नहीं करेंगे, हम ये अनुभव करेंगे कि कैसे गिट्टी गिट्टी हम बहुत प्यार से बाबा के भंडारे का अन्न बाबा के साथ साथ साथी बनाकर स्वीकार करें, चाहे भंडारे में है चाहे कहीं है। ये दो दिन मैं हूं ही फरिश्ता, और फरिश्ता जो भी करेगा इशारे से करेगा। जब फरिश्ता देह भाव में नहीं है तो मुख से आवाज की बात आती नहीं है, अगर कोई बात है इशारे से कही, एक दो से मिले बड़े प्यार से, मुस्कुराओ, जरूर मुस्कुराओ। फरिश्ता मना हंसता खेलता मुस्कुराता, एक दो में मुस्कुराओ, एक दो को मुस्कुरा के प्यार प्यार में नैनों से मुलाकात करके नैनों से ओम शांति कहो, मुख से ओम शांति भी हमको बोलने की दरकार। ये नैन से नैन का मिलना ये कितना सुखदाई है, ये एक नया अनुभव ये दो दिन में हम करेंगे। ठीक है, तो मुस्कुराती मूरत भी रहे, ऐसा नहीं ऐसा गंभीर हो जाए तो देखने वाले को लगे पता नहीं क्या दुख का पहाड़ टूट गया है। हाँ, ऐसा मौन में गंभीर भी नहीं रहना है, लेकिन ये अनुभव करना है, पाना था। मैं और मेरा बहुत बात करने के दिल हो तो बाबा से रूढ़िहानि करना, बाबा से बात करना, कभी फ्रेंड के रूप में, कभी लाइफ पार्टनर के रूप में, कभी पिता के रूप में, जिस भी रूप में मन चाहे। हाँ, आज पता है कौन सा डे है? आज फादर्स डे है। हाँ, यहाँ से सोने जाने के पहले आज फादर के रूप में फादर को अपनी पूरी पूरी क्या कहे, दिल की भावनाएं, एक बच्चे के रूप में, एक सिक्की लदे बच्चे के रूप में बाबा के पास वो शुक्रिया जरूर रखना कि आपने, आपकी नजर पड़ी, आपने हमें अपनाया। दुनिया में सिर्फ साकार लौकिक बाप के हम अधिकारी बनते हैं, यहाँ बेहद बाप के बेहद वर्षे का अधिकार, जन्म जन्मांतर के लिए हमारा मीठा बाबा हमें दे रहा है। तो आज अच्छी तरह ये फादर्स डे को भी सोने से पहले अपनी पूरी भावनाएं बाबा के पास रख देना। हम अभी थोड़ी सी देर आज की मुरली को रिवाइज करते हैं। आज की मुरली का टाइटल क्या रहा? भले अपनी डायरी खोलो, भले प्रेम से खोलो, टाइटल क्या रहा? व्यर्थ का त्याग कर समर्थ बनो। अभी किस बात में समर्थ बनने की बात कही बाबा ने? व्यर्थ का त्याग, लेकिन समर्थ किस बात में बनना है? संकल्प में समर्थ बनना है। और आज की मुरली की सबसे अहम मुख्य पॉइंट क्या थी? समर्थ बनने के लिए मुख्य पॉइंट क्या रही? आज बाबा ने खास कर्म के ऊपर हमारा ध्यान खिंचवाया है। जो समर्थी की बात कही, इसमें सुकर्म, व्यर्थ कर्म और विकर्म, इन दोनों को ही जीतने की बात बाबा ने कही। व्यर्थ कर्म भी न हो और विकर्म भी न हो। एक और बात ऐड की बाबा ने, साधारण कर्म भी न हो। अब हम ईश्वरीय गोद लिए हुए ईश्वर के बच्चे हैं, तो ईश्वर के बच्चे माना ही असाधारण, साधारण नहीं, कॉमन मैन वो है जो दुनिया में कॉमन जिंदगी जी रहे हैं। अब हम भगवान के बच्चे बने हैं, तो अब हमारे में कोई भी कॉमन मैन नहीं है, हम अभी ईश्वर के एडॉप्टेड बच्चे हैं, और इसीलिए हम अभी कोई भी साधारण कर्म भी कर नहीं सकते हैं। साधारण कर्म को क्या डिफाइन किया बाबा ने? नहीं, साधारण कर्म तीन बातें सुनाई, एक है व्यर्थ, दूसरा है साधारण, और तीसरा है विकर्म। तीन अलग अलग चीजें हैं। साधारण कर्म किसको कहेंगे? वो तो व्यर्थ हुआ, अनप्रोडक्टिव कर्म जो भी है, जिसे कुछ जमा नहीं होता है, वो तो व्यर्थ है। साधारण किसको कहेंगे? हाँ, बाबा ने ये बात कही, जिस कर्म में हम चला लेते हैं तो ऐसे चलता है, ऐसे ही बैठे थे, ऐसे ही बात कर रहे थे, हाँ, आधा घंटा बाहर बैठे थे थल्ले पर, क्या किया? नथिंग स्पेशल, ऐसे ही बैठे थे। अच्छा, ऐसे ही बैठे थे, क्या बात की? इधर की उधर की, लेन देन, समाचार, कॉमन, जिसमें नथिंग स्पेशल। ऐसे साधारण कर्म भी अब हम ब्राह्मण कर नहीं सकते हैं। अब लिस्ट निकालो, ऐसे साधारण कर्म हम सारे दिन में क्या क्या करते होंगे। यस, हाँ, दोनों तरफ से हम बातें करेंगे ना तो हम एंजॉय करेंगे। पूछा जाता है तो बोलने की छुट्टी है। मौन की बात मैंने कही है, लेकिन क्लास में प्रश्नोत्तर में बोलने की छुट्टी है, उसके बाद यहाँ से उठने के बाद मौन। नहीं, वो भी मैंने शायद, आप अभी लेट आए ना, मैंने अभी अभी ध्यान खिंचवाया। नहीं, कल से सबने हाथ उठाया है कि कल से हम टोटल मौन रखेंगे। भाई सुलक्षणा दीदी को एक बार फिर कंफर्म कर दो, कल टोटल मौन जो रखेंगे हाथ उठाओ। देखा सुलक्षणा बेन, थैंक यू। तो साधारण कर्म कौन सा है? ये साधारण में बोला ना, खाते खाते ऐसे ही बात कर ली, कमरे में गए ऐसे ही बात कर ली, नहीं, ये कॉमन मैन वाला कोई भी कॉमन कर्म अब मुझ ब्राह्मण के खाते में नहीं चाहिए, क्योंकि साधारण कर्म का रिजल्ट क्या है? क्यों नहीं चाहिए? साधारण कर्म का रिजल्ट क्या? कोई कमाई नहीं है। चलो मान लिया गवाना नहीं है, लेकिन कमाई भी तो नहीं है। अगर कोई व्यापारी बिना धंधा किए यूं ही बैठा रहता है तो सारे दिन के बाद कमाई क्या हुई? जीरो। वो कोशिश करेगा कि अगर कोई ग्राहक आया, सारे दिन में धंधा नहीं हो रहा है तो थोड़ा वो कीमत को आगे पीछे करके भी अपना माल, एट द एंड ऑफ द डे थोड़ा बहुत भी धंधा करने की कोशिश करेगा। और हम अगर सारे दिन में यूं ही चल रहे हैं, यूं ही बैठे थे, सारे दिन का अपना चार्ट देखो कि आज के दिन में कमाई कितने की मैंने, चलो मैंने व्यर्थ भी नहीं गवाया, अनप्रोडक्टिव काम नहीं किया, लेकिन अगर साधारण किया तो भी मेरी कमाई तो कुछ जमा नहीं हुई। कितनी अच्छी कही बात पावन ने कि आप बच्चों का एक एक सेकंड भी कितनी वैल्यूएबल है, हीरे के बराबर। तो सेकंड नहीं गवाया, लेकिन क्या गवाया? हीरा गवाया। और इतने हीरे वहां जन्म जन्मांतर की कमाई में कट होंगे, ऐसा नुकसान का धंधा कौन करेगा? इसीलिए अब मुझे साधारण कर्म भी नहीं करने हैं। तो अब मेरे खाते में क्या कर्म बाकी रहा? अच्छा, तीसरा कौन सा सुना है बाबा ने? विकर्म। विकर्म को खत्म करके बाबा ने विकर्मा जीत स्थिति की बात सुनाई। अब विकर्मा जीत किसको कहेंगे? विकर्म का संन्यास, मन विकर्म हो जाए, ऐसी परिस्थितियां क्रिएट होंगी जिसको हम माया कहते हैं। मायावी बातें, मायावी घटनाएं, मायावी सिचुएशंस, मायावी परिस्थितियां हमारे सामने आएंगी, लेकिन हम माया के वश होकर कोई भी विकर्म न करें। अब विकर्म के खाते में कौन कौन सी बातें जाएंगी, जिसको बाबा ने भाषा में स्पष्ट किया, सिर्फ मोटे मोटे विकार तो हमने ब्राह्मणों ने जीत लिए, हमने काम विकार को जीता कहने को तो ब्रह्मचर्य व्रत की पालना कर ली, लेकिन अगर किसी को भी देखकर मेरी दृष्टि थोड़ा भी आकर्षित होती है, किसी स्पेसिफिक व्यक्ति से एक्स्ट्रा बात करना मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, तो वो क्या हुआ? सूक्ष्म विकर्म हुआ। कोई एक व्यक्ति के साथ मुझे लंबा टाइम बैठना, अच्छा लगता है। जरूरी है या नहीं है वो डिफरेंट बात है, अच्छा लगता है। वो किस खाते में जाएगा? अपनी दृष्टि की सूक्ष्म से सूक्ष्म बात को चेक करो कि कौन कौन सी ऐसी चीज है जो विकर्म के खाते में जाएंगी। मानो कोई बहुत चंचल व्यक्तित्व है, कई होते हैं, भाई बहने छोटी उम्र के हैं, बहुत अदाएं करते हैं, बहुत नखरे करते हैं, फैशनेबल कपड़े पहने हुए हैं, उनको देख करके मेरा पहला संकल्प क्या चलता है? अगर जरा सा भी संकल्प चलता है क्या वो विकर्म के खाते में नहीं जाएगा? जरा सा भी संकल्प, अरे जरा देखने की भी दिल हुई, क्या हुआ, देख ही तो लिया, कौन से खाते में जाएगा? हमें अपने को विकर्मा जीत बनाने के लिए इतनी सूक्ष्मते सूक्ष्म चेकिंग में जाना पड़ेगा। ऐसे नहीं मोटी बात को तो हम ध्यान में ले लेते हैं, छोटी बात को चला लेते हैं। ये देखने का इंटरेस्ट भी अब हमारा ना हो। कई भाई बहने अभी भी टीवी सीरियल्स बहुत मस्ती से देखते हैं, क्या हुआ, इतना देख लिया तो कोई थोड़ी मन खराब हो जाएगा। लेकिन अगर बार बार वो चीजें देखने की, गंदगी देखने की अगर मुझे जरा रुचि भी होती है तो इसका मतलब अभी तक सूक्ष्म में वो आकर्षण मुझे आकर्षित कर। इतनी सूक्ष्मता में जाकर के मुझे अपनी दृष्टि को, अपनी वृत्ति को, अपनी स्मृति को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि विकर्म का जो बीज है ना वो दृष्टि वृत्ति स्मृति। पहले वो बीज दृष्टि में आता है सूक्ष्म रूप। जब दृष्टि को थोड़ा अट्रैक्ट करता है तो वो वृत्ति बनती है। बार बार वो वृत्ति डेवलप होने से वो हमारा संस्कार बनता जाता है, सूक्ष्म संस्कार। और जो सूक्ष्म संस्कार बना वो बार बार स्मृति में मन को अपनी तरफ खींचता है, आकर्षित करता है। इसीलिए बाबा ने जीत की बात कही, जीत माना उसको विन करना। वो परिस्थितियां हमारे सामने आती है, वो बातें हमारे सामने आती है, वो सिचुएशन हमारे सामने आती है, लेकिन वो मेरी बुद्धि को प्रभावित ना करे, मेरी बुद्धि को वो चलायमान ना करे, मेरी बुद्धि या वृत्ति को वो थोड़ा भी लगाव या झुकाव में ना ले आए। देखते हुए भी ना देखना, सामने कोई चीज होते हुए भी असर ना आना, ये है विकर्मा जीत स्थिति के लिए पुरुषार्थ। और ये हमें मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे मामा के जीवन की एक ये बात मुझे हमेशा टच की है। एक बार साकार मुरली चली, पुरानों ने सुनी होगी बात, साकार में मुरली चली कि बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगने चाहिए और उसमें बड़े बड़े चित्र लगने चाहिए। मम्मा जिस दिन ये मुरली बाबा की चली, मम्मा मुंबई में थी, तो रमेश भाई जी की गाड़ी में मम्मा कहीं ट्रैवल कर रही थी, तो जब ट्रैवल करते करते कहीं रास्ते से गुजरे और बहुत बड़ा होर्डिंग देखा, तो रमेश भाई ने मम्मा को ऐसे ही सहज भाव में कहा, मम्मा आपने वो होर्डिंग देखा, कितना बड़ा अच्छा होर्डिंग था। तो मम्मा मुस्कुराई, तो रमेश भाई ने एकदम से कहा कि मम्मा ये तो आज बाबा ने बड़ी होर्डिंग लगाने की बात कही ना, इसीलिए आपसे पूछा। तो मम्मा ने बड़े नशे से जवाब दिया, जिन आंखों ने स्वयं भगवान बाप को देख लिया, उन आंखों को अब दुनिया में क्या देखना बाकी रह गया है। नहीं देखा ये नहीं कहा, जवाब क्या दिया कि जिन आंखों ने अभी स्वयं भगवान को देख लिया, इस दुनिया की कोई भी चीज देखने का रस इन आंखों को अभी नहीं, देखते हुए भी नहीं देखा, मतलब जो चीज देखी उसका हमारे मन पर कहीं कोई प्रभाव नहीं है, जैसे देखा ही नहीं है। ये पुरुषार्थ हमारे बड़ों ने किए, छोटी छोटी बातों पर अलर्ट होकर के उन्होंने ये पुरुषार्थ का मार्ग हमारे आगे दिखा, चल करके दिखाया है। और आज जब बाबा ने विकर्म के त्याग की बात कही, तो जब तक हमारी मन और बुद्धि से इन बातों का आकर्षण जाएगा नहीं, तब तक प्रैक्टिकल कर्म से हम अपने आप को बचा नहीं सकते, क्योंकि कोई भी कर्म का बीज संकल्प है। हाँ, कभी कभी इसकी गति बहुत फास्ट होती है, संकल्प में आया और प्रोसेस इतना फास्ट हो जाता है कि कब मन में आया, कब हमने करने का डिसीजन ले लिया और कब हमने कर्मेंद्रियों से कर्म कर लिया, वो टाइम गैप इतना छोटा होता है जो हमें पता नहीं चलता है। चलो हम थोड़ी सी क्षण बाबा के पास काफी कंट्रोल के लिए चले जाते हैं, खुद ही अंदर जाकर के चेक करें कि मेरी विकर्माजीत स्थिति के लिए मुझे कौन कौन सी कर्मेंद्रिय पर अभी और स्ट्रॉन्ग चेकिंग करनी है। एक और शब्द का प्रयोग बाबा ने आज की मुरली में किया, कहा रॉयल आत्माई। हम सत्युगी आत्माएं हैं बेसिकली, और सत्युगी सतोप्रधान आत्मा की सबसे बड़ी विशेषता क्या रही, रॉयल्टी। और रॉयल आत्माएं क्या नहीं कर सकती है, साधारण कर्म नहीं कर सकती है और एक सेकंड वेस्ट नहीं कर सकती। एक और बात कही बाबा ने, अंश मात्र भी विकर्म न हो, और अशुद्ध संकल्प अशुद्ध खान पान न हो, जानते मानते चलते, जानते हैं मानते हैं लेकिन चलने में नंबरवार है। और इसमें एक कहानी कौन सी सुनाई, हंसी की बात करते करते तोते की कहानी सुनाई कि नल पर बैठा है और बोल रहा है कि तोते राम गंगा राम नलके पर मत बैठ, गंगा राम नलके पर नहीं बैठो, और बैठा है तो दूसरों को कह रहे हैं लेकिन खुद अपने लिए इतना अलर्ट नहीं। हम समझते हम अभी ब्राह्मण बन ही गए, हम तो यही बाबा के बच्चे, लेकिन पीछे मुड़ करके जो सूक्ष्म चेकिंग खुद की हमें बार बार करनी चाहिए, वो चेकिंग के प्रति हमारा लक्ष्य कम हो जाता है। हम जनरली दूसरों की चेकिंग ज्यादा रखते हैं, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है, दूसरों की चेकिंग ज्यादा रख लेते हैं। जब अपनी चेकिंग की बात आती है तो हम अपने को लूज छोड़ देते हैं कि अभी कौन संपन्न बना है, अभी कौन 100% बाबा की तरह कंप्लीट बन गया है, फलाने महारथी में भी ये प्रॉब्लम है, फलानी महारथी में भी ये वीकनेस है, उससे तो हम अभी बहुत अच्छे हैं। ऐसे करके हम अपने को कहीं कहीं चला लेते हैं। तो ये भी रॉयल अलबेलापन है, ये आत्मा की रियल रॉयल्टी नहीं है। और यही विकार का रॉयल स्वरूप एच बाबा ने कहा आत्मा को सुकर्मी नहीं बनने देता है। सुकर्म के लिए बाबा ने एक शब्द कौन सा सुना है, किस आधार पर वो सुकर्म बनता है, कोई भी कर्म श्रीमत के आधार पर। हाँ, इसकी टेस्ट ये है, कोई भी कर्म अगर श्रीमत के अनुकूल है तब वो सुकर्म है, अगर वो श्रीमत के अनुकूल नहीं है। अब श्रीमत में क्या होता है, कई बार हम श्रीमत को अपने इंटरेस्ट में इंटरप्रेट करते हैं, जो काम मुझे करना है ना वो मैं मेरी समझ के हिसाब से या मुझे जो अनुकूल होता है मेरी कंफर्ट के अनुसार मैं श्रीमत को तोड़ मरोड़ के इंटरप्रेट कर देती हूँ। नहीं, एक्यूरेट बाबा की श्रीमत को मुझे चेक करना है कि बाबा ने क्या श्रीमत दी हुई है, मेरे स्वार्थ को देखकर नहीं, मेरी कंफर्ट को देखकर के नहीं। और सुकर्मी की जो प्रत्यक्ष फल सुना है वो क्या सुना है, जो सुकर्मी आत्माएं होंगी उनको प्रत्यक्ष फल क्या मिलेगा, खुशी और शक्ति, दो बातें सुनाई बाबा ने कि अगर हम यहाँ सुकर्मी आत्माएं होंगी तो कैसी भी परिस्थितियों के बीच हमारी खुशी बनी रहेगी और आत्मा की शक्तिशाली स्थिति रहेगी। हाँ, वो अपने को कभी खाली फील नहीं करेंगे, खाली फील करेंगे तो खुशी अपने आप गायब हो जाएगी। दोनों चीज का आपस में कनेक्शन है। तो इस बात पर बाबा ने आज अंडरलाइन कराया कि किस बात का त्याग करना है, साधारण कर्म, साधारण बोल और साधारण समय जो हम बिताते हैं उसका त्याग, ये बाबा ने कहा आज अंडरलाइन करो। क्यों त्याग करो, इसके लिए क्या स्मृति दिलाई बाबा ने, वेरी गुड, ब्राह्मणों का पार्ट है हीरो हीरोइन का पार्ट, और हीरो हीरोइन अपने पार्ट में अगर थोड़ा भी नेग्लिजेंट है तो वो बेस्ट पार्ट बजा नहीं सकता है। हीरो हीरोइन का पार्ट माना बेस्ट भी है और एक्यूरेट भी है, तभी वो हीरो हीरोइन का पार्ट हो सकता है। फिर यादगार की निशानियां क्या क्या सुनाई, क्या क्या सुनाया उसमें, एक सेकंड के दर्शन का मूल्य वैल्यू है। फिर तो दर्शन समय की वैल्यू है, एक सेकंड का दर्शन माना एक सेकंड समय की वैल्यू है, और वरदान संकल्प की वैल्यू है, और बोल दो वचन सुनने के लिए बाबा ने कहा तड़पते हैं, और कर्म उनके चरित्रों का वर्णन करते करते बाबने का गदगद हो जाते हैं। इतनी ऊंचाई को भक्त लोग फील करते हैं कि ये किया आपने, ये किया, वर्णन करते करते भी गदगद हो जाते हैं। तो आज की मुरली में बहुत सारी बातों को बाबा ने अंडरलाइन भी कराया है, पुरुषार्थ के लिए इशारा भी दिया है, और समय के अनुसार जिस त्याग की हम ब्राह्मणों के जीवन में आवश्यकता है उसको रिवाइज भी कराया है। कई बार चलते चलते हम लूज हो जाते हैं। अभी रोज मुरली क्लास कर रहे हैं, अमृत वेला भी कर रहे हैं, भले झुटके वाला कर रहे हैं या कैसा भी कर रहे हैं, कर तो रहे हैं, नियम प्रमाण चल तो रहे हैं। तो हम अभी कईयों को समझते हैं कि अभी बहुतों से तो हम बहुत अच्छे हैं। ऑफ कोर्स बहुतों से हम बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अच्छा अच्छा समझते ऐसा न हो जो हम अपनी कंप्लीटनेस से दूर हो जाए। हाँ, तो इसीलिए आज बाबा ने इस त्याग की बात को रिवाइज कराया है। देह के त्याग की, देह भान के त्याग की बात एक मुरली में बाबा ने कही, देह के संबंधों के आकर्षण की बात एक मुरली में बाबा ने कही, और आज इस मुरली में बाबा ने व्यर्थ और विकल्प, विकर्म, इन सब चीजों के त्याग की बात को बाबा ने दोहराया। और लास्ट हम रिवाइज कर लेते, वरदान क्या था, किसी भी बुराई को, कोई बुराई मन बुद्धि में भी टच न हो, ऐसा पक्का वैष्णव तो इन चीजों को हमें रिवाइज भी करना है रोज के मुरली से। ये एक प्रयोग हर एक करके देखे, रोज की मुरली से दो बातें अपने पास नोट करो। भले हम प्रश्नोत्तर भी लिखते, पॉइंट्स भी लिखते हैं, लेकिन रोज की मुरली से दो बात हर एक नोट करो। एक मुरली का जो मुख्य पॉइंट या सार हो, मुख्य बात हो, और दूसरी आज के दिन के लिए मेरा अभ्यास क्या रहेगा। और छोटी छोटी बातों के अभ्यास में अगर हम सक्सेसफुल हो जाएंगे तो पुरुषार्थ करने का हमारा उमंग, उत्साह एकदम बढ़ जाएगा। तो आज यहीं पर हम अभी पूरा करते हैं, बाबा को याद करने के बाद सभी नियम प्रमाण एटलीस्ट 10 मिनट, चाहे बाबा के कमरे में जाकर बैठो, लेकिन बाकायदा 10 मिनट बैठना। देखो यहाँ हमें कोई जल्दी नहीं है, और इसीलिए हर एक लक्ष्य रखे कि एक तो क्लास में टाइम से आ जाना है, क्यों एक सेकंड भी मुझे मिस नहीं करना है। यहाँ हम क्यों इतना दूर से, इतनी ट्रैवलिंग करके, हमारा काम धंधा सब छोड़ करके यहाँ क्यों आए हैं, यहाँ क्यों आए हैं, अपनी पूरी कमाई जमा करने। तो एक मिनट भी मेरा वेस्ट ना हो, कोशिश ये करो कि टाइम के बाद एक भी एंटर नहीं हो रहा है, सब टाइम पर बैठे हैं। अगर हम लेट आते तो हमको लगेगा कि अरे सब आ गए और हम लेट आए हैं। इतना एक्यूरेट आप पहुंचाना, टाइम पर आना। दूसरी बात, कुछ भी मिस नहीं करना। तीसरी बात, ये 2 दिन पूरी तरह से बाबा के पास आज ही ये संकल्प रख के जाना कि 2 दिन में मुझे पूरी तरह से अनुभूति का सागर लेकर के जाना है। अनुभूति की बूंदे नहीं, भरपूर सागर, इतना यहां से लेकर जाना है। बार बार आप लोगों को यहाँ पांडव भवन में भट्टी करने का चांस मिलने वाला नहीं है। इस साल मिला है तो अगले साल आपको चांस मिलने वाला नहीं है। इसीलिए जो चांस मिला है उसका भरपूर उपयोग करना है। ये बात अच्छी तरह अंडरलाइन करना, बाबा के पास ये संकल्प रख देना और एक लक्ष्य बने, जब भी बैठे एकदम डेड साइलेंस की अनुभूति हो जाए। खासकर बाबा की कुटिया से लेकर हिस्ट्री हॉल तक का जो ये पैसेज है, ये पैसेज में साकार बाबा के मैक्सिमम कदम पड़े हैं। कुटिया से लेकर के हिस्ट्री हॉल मैक्सिमम कदम वो पाथ पर पड़े हैं। डीप साइलेंस में रह करके वो पाथ पर, वो राह पर, वो वाइब्रेशंस को फील करने की कोशिश करो। लेकिन वो सब तब होगा जब बाहर की दुनिया से हम बिल्कुल अंतर्मुखी स्थिति में आ जाएं।